ओम शांति। अनादि गुणों की अनुभूति तीन रूपों में, निराकार आकारी फरिश्ता और साकारी ब्राह्मण। यह था प्रोजेक्ट का टाइटल। जब हम कहते हैं निराकार, तो पहला हमारा कॉलम अगर यह दिख रहा है तो पहला है रूप, रूप है निराकार आकार और साकार। धाम होगा निराकार में परम धाम शांति धाम, आकारी में धाम होगा सूक्ष्म वतन और साकारी ब्राह्मण स्थूल वतन। तो ये हमारा है सेकेंड रो, सेकेंड पैरामीटर। तीसरा पैरामीटर आई थिंक अभी नहीं है, तीसरा पैरामीटर स्वमान। तो जब हमने शांति का अनुभव किया, सातों गुण, हर एक गुण को हमने कुछ हफ्ते दिए, शांति को तीन चार हफ्ते, प्रेम तीन चार हफ्ते, सुख तीन चार हफ्ते, ऐसे हर गुण को तीन चार हफ्ते। अभी हम एक गुण की बात करेंगे, शांति। तो शांति को हमने तीनों रूप में, निराकार आकार और साकार, तीनों वतन में, परम धाम सूक्ष्म वतन स्थूल वतन और स्वमान मैं शांत स्वरूप आत्मा, बाबा के साथ संबंध ये चौथा पैरामीटर माता के रूप में। तो जब हम ये पैरामीटर्स के साथ अभ्यास करते हैं तो हमारे पास इन सब की कैंट कॉमेंट्रीज हैं, और इस कॉमेंट्री के बाद हमारा जो प्रयोग था उसमें कोई गाइडेंस नहीं था, कोई टेक्स्ट बुक, कोई डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना नहीं था। ये सब अनुभूति के आधार पर जो आपके सामने यहाँ प्रेजेंट हो रहा है। तो अनुभूति के आधार पर हमारे भाई बहनों ने ये डेरिवेशन किया, सिद्ध किया कि जब हम बाबा को निराकार की अपनी विशेषता, आकार टूल्स हम जो आकार में यूज करते हैं, हमारे पास सूक्ष्म शरीर है, आकारी शरीर है जिसे यूज करना है। दूसरा टूल आकारी स्वरूप में हमारे संकल्प है, इन संकल्पों को यूज करना है। तो टूल्स आकारी वतन के अलग, साकारी वतन में हमारा स्थूल शरीर है जिसे हमें यूज करना है, हमारे पास वाचा है जिसे हमें यूज करना है। तो ये साकार के टूल्स अलग और निराकार के टूल्स बुद्धि, बुद्धि से हमें परम धाम देखना है, मन से हमको गुणों का गहराई से अनुभव करना है। तो तीनों के जो टूल्स जो थे हमारे पास वो अलग थे, और इसलिए जो विधि, जब टूल्स अलग है तो विधि अलग थी। जब हम आकार में हैं तो हम वतन का इस उपयोग करते हैं, हम परम, हम सूक्ष्म वतन में जाते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर को वहां यूज करते हैं, बाबा बाप दादा को यूज करते हैं, और हम आत्माओं उनको भी वहां पर इमर्ज करते हैं सूक्ष्म शरीर के साथ। तो जब शांति की बात करते हैं, आकारी वतन की बात करते हैं, बाप दादा को फरिश्ते के रूप में यूज करना है, अपने आप को बाप दादा मेरी माता, संबंध माँ का है, मैं बाप दादा का बच्चा फरिश्ता उसकी गोद में समा जाता हूँ, तो इससे हमारी विधि निकलती है। और जो विधि निकाली, जब हम गोद में बाप दादा के समा गए, तो हम धीरे धीरे देखते हैं हम भी दूसरी आत्माओं को वहीं मर्ज करते हैं सूक्ष्म शरीर के साथ, बाप दादा उन्हें भी अपनी बाहों में एक माँ का, माँ के रूप में प्रेम देता है। तो हमारी दृष्टि उन आत्माओं के प्रति माता पुत्र की हो जाती है, और जब माता पुत्र की दृष्टि हो जाती है तो माता के पास क्या है, अथाह सहन करने की शक्ति। माता अपने किसी भी पुत्र की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती। तो जो डेरिवेशन है नेक्स्ट इसमें, शक्ति हम धीरे धीरे देखें, गुण कौन सा, माँ क्या करती, हर बात अपने पुत्र की क्षमा कर देती है। तो जब हम इस तरह का रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, ऐसी विधि का प्रयोग करते हैं, तो क्षमा, ये बहुत आसानी से यह गुण हम में धीरे धीरे आने लगता है। और इसके कारण किसी को भी सहन करना, समा लेना, माता अपने पुत्र को सहन करती है, समा लेती है, और इसलिए सहन शक्ति धीरे धीरे, हमने देखा जो शक्ति हमें डेवलप हो रही है वह है सहन शक्ति। तो इस और इस प्रकार से जो अवगुण है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, क्रोध है, वो कम होने लगता है। तो हमारे जो प्रयोग में जो हमने ये पायलट किया उसमें यह किया, जैसे हमने फर्स्ट कॉलम देखा, गिवन थे, ये जो फर्स्ट टेबल है ये गिवन है, इसके ऊपर कमेंट्री गिवन है कि निराकार शांत स्वरूप, निराकार आत्मा, परम धाम, माता का संबंध और कमेंट्री, ये गिवन है। लेकिन हमें क्या करना है, अनुभव के आधार पर फिर ये दूसरा, ये जो दूसरी स्लाइड दिखाई जा रही है, यह अपने आप लिखना है कि ऐसे समय कौन सा दिव्य गुण हमें उस स्थिति में स्थित होकर वो कमेंट्री करके, कौन सा दिव्य गुण, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गुण हैं, कुछ गुण यहाँ लिखे हैं, लेकिन हम सब और तरह तरह के एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं। बाबा कहते हैं ना, योगी सो प्रयोगी, हमें तरह तरह के प्रयोग करके और फिर तरह तरह के कौन से दिव्य गुण हैं जो हमें इमर्ज होते हैं। पिता बोलेंगे तो हमें लीडरशिप इमर्ज होती है। ऐसे हमें खुद अपने आप को प्रयोग कर करके देखना है, अनुभव करने के बाद ही फिर इस फॉर्म को हमें भरना है। हम हरेक को यह फॉर्म मिलेगा भरने के लिए, अनुभव होगा वह शब्द यहाँ लिखना है, और अगर नहीं अनुभव होगा तो ब्लैंक रख देना है। तो यही हमारी विधि थी। तो हम सबने यहाँ पे वह अवगुण लिखे हैं जो अवगुण धीरे धीरे मुझ में कम होते नजर आए, वह दिव्य गुण लिखे हैं जो धीरे धीरे मुझ में इमर्ज होते नजर आए। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं शांत स्वरूप होती हूँ, मन शांत होता है, तो हम संस्कार में लिखते कम है क्योंकि संकल्प कम चलते हैं, तो संस्कार में स्टोरेज कम होता है, तो रिट्राइवल भी कम होता है, और जब हम यादें हमारी कम होती जाती हैं, और जब यादें कम होती जाती हैं, तो हम भूलते जाते हैं। ठीक है, कुछ हुआ आपके और मेरे साथ पहले, लेकिन हम भूलते जाते हैं, और जब हम फॉरगेट भूलते जाते हैं, तो फॉरगिवनेस क्षमा हमें बहुत आसानी से ये दिव्य गुण आ जाता है। और जब क्षमा की भरपूरता हो जाती है, ओवरफ्लो होने लगता है, तब वह शक्ति के रूप में इमर्ज होता है, और तब सहन शक्ति धीरे अपने आप बिना किसी प्रयोग के, बिना किसी एफर्ट्स के, सहन शक्ति हम में से ओवरफ्लो, कुछ भी कहो, क्योंकि हमारा तुम्हारा रिलेशन, मेरे और बाप का रिलेशन माता और पुत्र का है, तो मेरी आंखों में भी ममता है और हमारा रिलेशन भी माता पुत्र का हो जाता है, तो सहन करना बहुत आसान हो जाता है, सहन शक्ति बहुत सहज हो जाती है। तो इस प्रकार से ये प्रोजेक्ट किया गया पायलट के तौर पे, और अब हम सेकेंड ग्रुप की जब बात आएगी 4:30 पे, इस बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे, और तब हम और फोकस ये रहेगा कि ये सब प्रयोग करके हमारी अनादि स्थिति निराकार बिंदु रूप, हमें उस स्थिति को अचीव करना है, वो हमारा फोकस रहेगा पूरे साल भर का। और हर गुण को 40 दिन दिए जाएंगे, ज्ञान को 120 डेज दिए जाएंगे, जिसमें आत्मा, परमात्मा, समय, ड्रामा, इसके बारे में हम प्रयोग करेंगे। तो ये आप सबके साथ शेयर करना चाहते थे। सेकेंड हाफ में और डिटेल में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो रिजल्ट रहा, रिजल्ट ऐसा रहा कि हमारे ये सारे अवगुण, दिव्य गुण और जो शक्तियां हैं उनको किस प्रकार से यूज करना, उसकी विधि, किस स्थिति में किस प्रकार का प्रयोग करेंगे और किस प्रकार की प्राप्ति होगी, इस बारे में हमें अपने अंदर हमारा अनुभव गहराई से होता जाता है। और इस प्रकार से हमें सिचुएशंस पे कंट्रोल करना, सिचुएशंस में को अच्छे से पार करना, वो धीरे धीरे आसान होने लगता है। तो ये हम जब सेकेंड हाफ में बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे ये प्रोजेक्ट क्या है, और हर इसके साथ कमेंट्रीज रहेंगी जो सहयोग करेंगी और हम सब इसके साथ आगे बढ़ेंगे साल भर, और फिर हम अपनी प्रोग्रेस देखते जाएंगे, फीडबैक देते जाएंगे, एंड इट विल बी अ लूप, है ना। हम सब साथ में मिलकर हम आगे यह देखेंगे कि हम कितना आगे बढ़ते हैं, कहाँ पहुंचे हैं, और इसको चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम सेकेंड हाफ में। अभी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स तृप्ति बहन। वो एक्चुअली बहुत अच्छा उनका जो प्रयोग है, प्रैक्टिकल प्रयोग, उन्होंने बहुत अच्छी रीति से बताए। और आप सब ने ध्यान दिया होगा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने बताया कि अगर अनुभव नहीं होता है कुछ प्रयोग में तो फ्रैंक रहना है, बताना है कि अनुभव नहीं हुआ है, ऐसे उसको छुपा के झूठ नहीं बोलना है, फिर वो रिसर्च नहीं रहता है। क्योंकि अगर सफलता नहीं मिलती है तो उसका मतलब विधि में कुछ प्रॉब्लम है या उसमें कुछ ऐड करने होते हैं। अगर हम बोलेंगे हाँ सफलता मिल गया तो फिर विधि को जब हम दोबारा प्रयोग करेंगे जब सफलता नहीं मिलेगा तो प्रोजेक्ट का जो समय व्यर्थ चला जाता है, एफर्ट व्यर्थ चला जाता है। तो प्रोजेक्ट में डरना नहीं है, हम पुरुषार्थ करते हैं। जैसे गीत में ना, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभालना है, तो प्रोजेक्ट भी ऐसा ही है। तो कभी गिरेंगे कभी संभालेंगे लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो इसी तरह हाँ प्रोजेक्ट भी है, तो ओपन रहना है। अभी समय तो जा रहा है, अभी हम हमारे जो दूसरे प्रोजेक्ट है संपूर्णता के 10 कदम, उसके बारे में मैं रुपेश भाई से अनुरोध करता हूँ। तो वो इसके बारे में उनके जो विचार है, सूरज भाई जी के जो विचार है, तो आपके सबके सामने रखेंगे। रुपेश भाई।
ओम शांति। मैं सोचता हूँ मैं खड़ा होके बोलूं, थोड़ा और आपके नजदीक आ जाऊं क्योंकि शायद नीचे वालों को दिखाई नहीं दे। आदरणीय अलका दीदी, अंबिका दीदी के नेतृत्व में बहुत ही सुंदर सा प्रोजेक्ट अभी आप लोग सुन रहे थे, और सचमुच ये बहुत ही गहन विषय है और बहुत ही फोकस्ड रहेंगे हम जो आप लोगों ने सुना। तो मैं इन एडवांस बहुत बहुत बधाई देता हूँ इतने प्यारे प्रोजेक्ट के लिए। दूसरे प्रोजेक्ट की ओर मैं आपको लिए चलता हूं। ये है संपूर्णता के 10 कदम। ये हमने क्यों लिया, मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। क्योंकि कोई भी चीज ली जाती है तो कोई ना कोई कारण होता है। आप जानते हैं कि हम 2018 में आ गए हैं और महाभारत का 18वां अध्याय समाप्ति का प्रतीक है, और चूंकि 18 समाप्ति का प्रतीक रहा है इसीलिए हमने संपूर्णता को अपना लक्ष्य बनाना निश्चित किया, एक कारण ये रहा। दूसरा, आपने देखा 31st की मुरली में बाबा ने कहा ये वर्ष आवाज नहीं आए, समाप्ति वर्ष है। और जब हम समाप्ति वर्ष की बात कहते हैं तो समाप्ति से पहले संपूर्णता होनी बहुत जरूरी है, राइट। तो हम सब संपूर्ण बने इस वर्ष, ऐसी बाबा की भी प्रेरणा है। और जब कभी समाप्ति की बात आती है तो दो चीजें रहती हैं, एक तो मेरी समाप्ति, राइट, हो सकता है कि हम ऊपर बाबा जी के पास चल पड़े, राइट, अल्लाह को प्यारे हो जाएं, तो उससे पहले हम क्यों ना जो करना है वो कर लें। मम्मा की एक बहुत ही सुंदर बात, एक स्लोगन रही, मम्मा कहती थी कि हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझो। और चूंकि मम्मा ने इस चीज को अपने पुरुषार्थ में शामिल किया इसीलिए सबसे पहले संपूर्ण कौन बना, मम्मा बने, राइट। दूसरी बात समाप्ति से भाव है हमारी कमी कमजोरियों की समाप्ति, जो बाबा से भाव मैंने लिया। तो अब तक हम अपनी कमी कमजोरियों के साथ जीते आ रहे हैं, राइट। कुछ ना कुछ कमी वो चलती आ रही है, किसी के साथ 2 साल से, किसी के साथ 4 साल से, किसी के साथ 10-20 साल से। अब बाबा की एक सुंदर प्रेरणा है कि इस वर्ष हम उसे क्या करें, या 19 में भी लेके चलें, 20 में भी लेके चलें। इस वर्ष एक दृढ़ता की आवश्यकता कि अब वो कमियां हम समाप्त करेंगे। इसलिए ही संपूर्णता को ध्येय बनाया गया कि हम संपूर्णता के ऐसे सुंदर 10 कदम जो बाबा ने अब तक अपनी मुरलियों में कही हैं, उन्हें सार रूप में स्टेप बाय स्टेप लेकर के हम चलें। लक्ष्य यही है कि हम बाबा के समान बने। हम सब ब्राह्मण बने हैं बाबा के समान बनने के लिए। तो बाबा ने जो तपस्या की, बाबा ने जिन स्टेप्स को फॉलो किया, उन स्टेप्स को हम सब मिलकर के चर्चा करेंगे, निकालेंगे। कुछ बातें निकली भी हैं, लेकिन आप सबके विचार भी आए ऐसी कामना है। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं, जब हम ये विषय ले रहे थे तो कुछ के मन में ये भी ख्याल आ सकता है कि संपूर्णता एक बहुत बड़ा विषय है, हो सकता है, और शायद 1 साल इसके लिए पर्याप्त नहीं है। कुछ के मन में ये ख्याल आ सकता है, लाजमी है। लेकिन जैसे ही ये विचार हमारे मन में आता है, क्या होता है, हम थोड़े से ढीले हो जाते हैं कि नहीं, 1 साल में नहीं हो सकता। लेकिन मैं बाबा के कुछ महावाक्य आपके सम्मुख रखूं। बाबा कहते हैं 1 दिन में 1 साल का पुरुषार्थ किया जा सकता है। 1 दिन में 1 साल का पुरुषार्थ। और ऐसा भी वक्त आएगा कि जब तुम्हें ये करना पड़ेगा, तो लगता नहीं कि अब ऐसा समय आ गया है कि हम 1 दिन में 1 वर्ष का पुरुषार्थ करें। तो अभी हमारे पास 365 में, चलो 7 दिन घटा भी दीजिए आप, तो भी 358 ईयर्स आपके पास हैं। ये संपूर्णता के लिए तो ईयर्स मैं कह रहा हूं, ईयर्स है हमारे पास, डेज नहीं है। और 358 ईयर्स हमारे लिए बहुत है संपन्न बनने के लिए, राइट। तो ये एक बहुत सुंदर प्रेरणा हो सकती है बाबा की कि हम इस समय को, अपने एक एक पल को यूज करें। और दूसरी बात ये भी है, आपने देखा होगा कि जब लक्ष्य रखा जाता है, तो किसी महापुरुष की बहुत सुंदर बात है कि अपना लक्ष्य हमेशा सितारों पे चढ़ना बनाओ, ताकि सितारे तक ना भी पहुंच पाए तो ये बात तो पक्की है कि चांद नसीब जरूर हो जाएगा, राइट। तो हम तो ये कामना करते हैं कि हम सितारे तक अवश्य पहुंचें, लेकिन यदि वहां तक कोई कमी रह भी गई तो चांद तक तो हम अवश्य पहुंचेंगे। इस बात की मैं कहूं स्योरिटी अपनी तरफ से तो मैं जरूर दे ही सकता हूं कि हम सब मिलके ऐसा गहन पुरुषार्थ करें। क्योंकि लक्ष्य जब रखा जाता है, आप जानते हैं, जब आपको अकेले दौड़ाया जाए तो आपकी स्पीड बहुत नॉर्मल सी होती है, हल्की सी होती है। और वहीं कोई कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए तो आप खुद नहीं जानते कि आप इतनी तेज दौड़ सकते थे, राइट। आप अपना पैर सिर पे रख करके भागते हैं, वो कुत्ता भी शर्मा जाता है कि अरे यार मुझसे तेज भाग है। कैसे, अपने आप को बचाने का लक्ष्य। जब एक ध्येय होता है व्यक्ति के पास और वो उस पे लग जाता है तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। इसीलिए हम ये ना सोचें कि 1 साल में नहीं किया जा सकेगा, बहुत कुछ किया जा सकता है, बस ठानने की जरूरत है। आपने देखा होगा जो आईएएस के एग्जाम की तैयारी करते हैं, बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन बच्चों को आप देखिएगा 14 घंटे 16 घंटे डूबे रहते हैं, लग जाते हैं। मुझे लगता है अब ऐसे ही धुन की आवश्यकता है, हम भी एक धुन लगा दें तो इस प्राप्ति को सहज रूप से किया जा सकता है। और साथ ही एक बात और, जब बाबा ने समाप्ति की बात कही, यदि कोई डॉक्टर आपको ये कह दे कि आपके पास 1 साल का समय है, बस 1 साल, उसके बाद क्या होगा फिर? डॉक्टर कह दे 1 साल का समय है आपके पास, आप क्या करेंगे? इस भाव को लेकर के क्यों ना हम चले। मुझे ऐसा लगता है कई बार हम ऐसे जीने लगे हैं कि अभी हमारे पास 20-50 साल पड़े हुए हैं और इत्मीनान से हम चल रहे हैं। यदि केवल एक साल मेरे पास हो, एक व्यक्ति एक संत के पास पहुंचा और उस संत को कहा कि महाराज मेरी ये जो कमियां हैं कमजोरियां हैं वो छूट नहीं रही। उस संत ने कहा कमी कमजोरी एक साइड में रख, मुझे तेरा अंत दिखाई दे रहा है। इस मास के 31 तारीख को तू शरीर छोड़ देगा। 1 तारीख को गया था बेचारा, बड़ा दुखी हुआ, अपने घर आ गया, भजन कीर्तन में लग गया, अपनी जो भी पूजा पाठ है दान पुण्य है सब में लग गया। अब वो महात्मा 30वें दिन उधर से गुजर रहे थे, गए उसके यहाँ, बोले क्या हाल? क्या हाल महाराज, बस कल तो मुझे प्रस्थान करना है। बोले नहीं, वो तेरी कमी कमजोरियों की बात पूछ रहा हूँ, उनका क्या हाल है जो नहीं छूट रही थी वर्षों से। उसने कहा वो तो मैं भूल भी गया कि मेरे पास वो कमी कमजोरियां थी क्या, 30 दिन से वो यूज ही नहीं हो रही है, बस मैं तो ईश्वर के ध्यान में भजन में कीर्तन में लगा हुआ हूं। कैसे छूट गई? एक ध्येय, अपनी समाप्ति का डेट फिक्स कर लेने से ये चीजें सहज रूप से हमसे दूर होती चलती हैं। इसीलिए ये मान के चलिए कि यही एक साल मेरे पास है सुंदर पुरुषार्थ के लिए और इस एक साल में मुझे अपने 200 नाखूनों का जोर लगा देना है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जहां बाबा हमें देखना चाहते हैं। तो हो सकता है या नहीं हो सकता? कौन कौन कहते हैं हो सकता है, जरा हाथ देखना चाहूंगा। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके उमंग और उत्साह के लिए। और साथ ही इस प्रोजेक्ट को लेने का एक कारण ये भी कि बाबा ऊपर बैठे कब से हमारा इंतजार कर रहे हैं। और एक बहुत सुंदर सा मैसेज बाबा का आया था, बाबा ने कहा कि बाबा इंतजार कर रहे हैं कि कौन सा बच्चा सबसे पहले मेरे पास आएगा ये खुशखबरी सुनाने के लिए कि बाबा मैं संपूर्ण बन गया। तो आप में से कौन सुनाएगा? बहुत धीरे धीरे उठ रहे हैं, मुझे पता था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चल पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि आप संपूर्ण बन के बाप समान बन के यहां रहें और यहीं से वतन चलें अपनी सूक्ष्म स्थिति के साथ, जैसे तृप्ति बहन सुना रही थी, और वहां बाबा को ये संदेश दें कि बाबा मैं संपूर्ण हो गया हूं, अब जब चाहें आप मुझे बुला भी सकते हैं और जहां चाहें मुझसे सेवा करा सकते हैं। ऐसी स्थिति होनी चाहिए या नहीं? एक ब्रह्मा बाबा ऊपर और इतने सारे ब्रह्मा बाबा नीचे, ये इसका विशेष ध्येय है। क्या करेंगे हम? ब्रीफ में मैं वो चीजें रख रहा हूं। इसमें 10 कदम, जैसे मैंने पहले भी कहा, बाबा के जो पुरुषार्थ के रहे हैं, पूरे ज्ञान के जो निचोड़ हैं, उन्हें लेने का विचार है और एक एक मास हम उस पे फोकस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, बाबा ने कहा कि इस वर्ष को समाप्ति वर्ष के साथ श्रेष्ठ वर्ष के रूप में भी मनाओ। पहला एक कदम हो सकता है श्रेष्ठ स्मृति। हम सबको बाबा ने इतनी सुंदर सुंदर स्मृतियां दिलाई हुई हैं, हम खुद से पूछें वो स्मृतियां हमें कितनी याद रहती। बाबा ने कहा ये अंतिम अध्याय भी स्मृति लब्धा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, जब तक हम स्मृति स्वरूप नहीं बनते तब तक संपूर्ण नहीं बन सकते, जब तक स्मृति स्वरूप नहीं बनते तब तक हम नष्टो मोहा नहीं बन सकते। ये सुंदर स्मृतियां जो बाबा ने दिलाई हैं याद करके देखें। और ये सिंपल हम सुनाते भी हैं लोगों को, जैसे स्मृति वैसी स्थिति, जैसे स्मृति वैसे हमारे बोल, वैसा हमारा व्यवहार, वैसा हमारा जीवन। सिंपल सा फंडा है, लेकिन क्या हम स्मृति स्वरूप रह पाते हैं? तो स्मृति को पक्का करना, स्मृति स्वरूप रहने की सुंदर प्रैक्टिस करना, इसे एक कदम के रूप में लिया जा सकता है, विचार है। वैसे ही दूसरी बात, जैसे संपूर्ण आत्माभिमानी स्थिति को लिया गया है, बाबा ने बहुत गहराई से इस पे अभ्यास किए थे और हमारी जो हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसमें भी बहुत गहराई से इस पे वर्क किया जाएगा। तो दीदी आप लोग मक्खन निकालिएगा, हम लोग खाते रहेंगे। तो ऐसा विचार है कि संपूर्ण आत्माभिमानी स्थिति को भी एक कदम के रूप में लिया जाएगा। 2 मास तक विशेष उस पे कार्य करेंगे और साथ ही हर एक गुण की गहराई में उतरेंगे। जो जिस प्रकार के अभ्यास यहां दिए जा रहे होंगे उसे भी हम साथ में लेके चलेंगे। दोनों प्रोजेक्ट अलग कतई नहीं है। हाँ ये है कि इसका कैनवस थोड़ा सा हमें बड़ा लग रहा है, वहां हम कंप्लीटली फोकस्ड हैं। उनके द्वारा हम निकले हुए मक्खन को भी हम इस ग्रुप में यूज करेंगे, उसके स्वरूप बनेंगे, उसका आनंद लेंगे। तीसरा कदम हो सकता है समर्पणता। बाबा ने कहा है कि तुम्हारी संपूर्ण समर्पणता तुम्हें सेकेंड में संपूर्ण बना सकती है और ये स्पष्ट करता है कि हम सब भले समर्पित हों लेकिन शायद संपूर्ण समर्पणता अभी तक नहीं आई है। कुछ ना कुछ चीजें हमने अपने पास शेष रखी हैं, तो क्यों ना उन चीजों को जो हमें संपूर्ण नहीं बनने दे रही हैं, उन्हें हम इस वर्ष पूरी तरह बाबा को अर्पित करें, समर्पित करें और साथ ही अपने आप को संपूर्णता की ओर लेकर के चलें। तो विवेकानंद जी ने भी कहा था कि जो चीजें तुम्हारे लक्ष्य के मार्ग में बाधक बन रही हों, उन्हें विष की भांति त्याग दो। अब वो वक्त है कि इन्हें विष की भांति त्यागने की जरूरत है, चाहे वो कोई भी चीज हमें कितनी भी प्रिय क्यों ना हो, यदि बाधा बन रही है उन्हें हमें छोड़ना होगा, अन्यथा हम नहीं बन पाएंगे, समय पे पहुंच नहीं पाएंगे। उसी प्रकार एक कदम शुभ भावना, शुभ कामना, संपूर्ण निर्विकारिता, साक्षी भाव, सतत योग, ये सारे कदम हो सकते हैं जो अभी विचार किए गए हैं। और इन एक एक कदम को यदि आप देखेंगे तो इनमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप साक्षी भाव की बात करते हैं तो उसमें न्यारापन, प्यारापन भी आ जाता है, निमित्त भाव आ जाता है, निष्काम भाव आ जाता है। और साथ ही जब हम इस प्रकार संपूर्णता के लिए अभ्यास और पुरुषार्थ करते हैं तो हमारी कमियां भी समाप्त होती चली जाती हैं। यदि हम आत्मिक भाव धारण कर लेते हैं तो देह का आकर्षण या दूसरों के प्रति दुर्भावना रखना, दूसरों के लिए किसी भी प्रकार की गलत चीजें रखना, वो सब चीजें स्वतः ही हमसे छूटती चली जाती हैं। तो ये कुछ विचारणीय बिंदु हैं। शाम को भी हम लोग मिलने वाले हैं जो इस प्रोजेक्ट में हैं, वो सब भी मिलकर के विचार करेंगे। और साथ ही साथ कल आदरणीय सूर्य भाई जी जो इस प्रोजेक्ट के गाइड हैं वो भी हमारे बीच होंगे, तो उनके साथ भी मिलकर के उनके मार्गदर्शन में इन 10 कदमों को हम फाइनलाइज करेंगे। और कैसे करेंगे वो एक महत्वपूर्ण पहलू है। 11 मंथ 11 मास के लिए प्रोजेक्ट लिया गया है, फरवरी से हम इसे ऑफिशियली शुरू करेंगे। और जो 10 कदम लिए जाएंगे हर मास के लिए एक कदम पे हम फोकस करेंगे और उन्हें 4 स्टेप्स पे उसकी गहराई में उतरने का लक्ष्य रखा गया है। पहला उसका अध्ययन, श्रवण, जो भी सुंदर बातें हैं उस विषय पे वो की जाएंगी, कराई जाएंगी। दूसरा उन्हें समझना, वो बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है और समझने के लिए उस पे कैसे हम विचार सागर मंथन करें, उसकी गहराई में उतरें, इस स्टेप को फॉलो किया जाएगा। तीसरा स्टेप होगा अनुभूति करना, उस विषय की सुंदर अनुभूति की जाए, क्योंकि जब वो अनुभव बनता है तभी चौथा स्टेप आता है कि हम उसके स्वरूप बन पाते हैं। तो हर मास इन चारों स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा ताकि हम उसके स्वरूप बन जाएं और पूरी तरह से उस चीज को अपने जीवन में लाना होगा। लेकिन ये नहीं एक मास करने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे और आगे पाठ और पीछे सपाट, ऐसी स्थिति नहीं होगी। पहली चीज को हम दूसरे मास में भी ऐड करेंगे, तीसरे मास में हम पहले और दूसरी चीज को ऐड करेंगे, चौथे मास में इन तीनों चीजों को साथ लेते हुए चलेंगे ताकि ये चीजें साथ साथ हमारी चलती रहें, हमारे जीवन में स्वरूप में आती जाएं। इसके लिए वीकली एफर्ट्स आप तक पहुंचाए जाएंगे और साथ ही मंथली चार्ट भी तैयार किया जाएगा जो इस थीम पर ही आधारित होगा, जिस चार्ट में हमारी दिनचर्या, हमारे योग के अभ्यास, कुछ सुंदर स्वमान और साथ ही साथ कैसे हम उस चीज को अपने जीवन में ला सकते हैं उसके गहन चिंतन के बारे में भी चर्चा रहेगी। इस विषय में बाबा के सुंदर महावाक्य भी हैं, वो महावाक्य आप तक प्रेषित किए जाते रहेंगे। प्री और पोस्ट एनालिसिस भी किया जाएगा कि अभी की हमारी स्थिति कैसी है, जैसे पहले आप मन जीत जगत जीत में कर चुके हैं, अभी की स्थिति हमारी विभिन्न स्थितियों को लेकर कैसी है और इस प्रोजेक्ट के पश्चात हमारी स्थिति कैसी है, उन चीजों का भी एनालिसिस किया जाएगा। उसके भी फॉर्म बनाए जाएंगे जो आप फिलअप कर सकते हैं, तो आप स्वयं तो समझ ही पाएंगे लेकिन दूसरे भी आपके चलन चेहरे से, वो तो स्वतः प्रत्यक्ष होगा ही, उस चीज से लोग समझ पाएंगे। ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए हम सब जुड़े रहेंगे, जो भी ग्रुप में रहेंगे ये हमारा सुंदर मोड होगा। और साथ ही जो बहुत ही सिंसियरली करेंगे, बाबा तो उन्हें पुरस्कृत करेंगे ही, लेकिन विचार है कि उन्हें यहां भी पुरस्कृत किया जाए। ठीक है, हाँ, पुरस्कार में तालियां जरूर बजते हैं कि हाँ पुरस्कार के लिए तो हम कार्य जरूर करते हैं लेकिन बाबा हमें पुरस्कृत करते हैं, लेकिन मोटिवेशन के तौर पे ये भी एक चीज रखने का विचार है। तो अंततः मैं यही कहूंगा कि प्रोजेक्ट बहुत विशाल है, विस्तृत है, लेकिन फिर भी हम अपने उमंग से, अपने उत्साह से इस तक हम अवश्य पहुंच सकते हैं, क्योंकि बाबा की खास ये हमसे प्रेरणा है ही कि बच्चे अब तुम ऐसा बन करके दिखाओ। और पूरा कल्प हमारा होगा, लेकिन एक साल हम बाबा को अर्पित कर दें। यदि एक साल हम पूरी तरह बाबा को अपने पुरुषार्थ को अर्पित करेंगे, जैसा वो चाहते हैं, जैसा बनाना, उस पर यदि हम कमिटेड रहेंगे तो ये लक्ष्य हमसे दूर नहीं होगा। तो सारा कल्प आपका, लेकिन ये एक साल भगवान का हो सकता है। कौन कौन कहते हैं एक साल हम पूरी तरह बाबा को दे सकते हैं, कमिटमेंट कर सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो आप सभी का जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे पूरी उमंग के साथ, उत्साह के साथ, और ऐसा रिजल्ट देने वाले जो हैं, उन सबको इस ग्रुप में सादर निमंत्रण है। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स रूपेश भाई, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप में बता दिए कि कैसे हम संपूर्णता की 10 कदम, मैंने सारा पुरुषार्थ को समेट सकते हैं 10 स्टेप्स में, और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो सभी उनसे भी बहुत प्रेरणाएं लिए होंगे, और उम्मीद करते हैं कि वो प्रेरणा सारा साल प्रोजेक्ट के काम में जो भी इसमें भाग लेंगे वो उसको अप्लाई करेंगे। क्योंकि क्या देखा जाता है, यहाँ पे सभी उमंग उत्साह में आ जाते हैं, फिर बहुत जो सारा साल जो काम चलता है उसमें बहुत कम पार्टिसिपेशन होता है। लेकिन इस साल से उसको थोड़ा सा चेंज करने का प्लान है कि सारा साल में यहाँ पे जितने आते हैं सभी का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, तभी उसका जो प्रोजेक्ट का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। तो इसके लिए अभी जो हमारा आफ्टरनून का सेशन रहेगा 4:30 से 6 बजे, उसमें ग्रुप का एक्टिविटीज, अभी जैसे दोनों ग्रुप के जो कोऑर्डिनेटर्स है तो उन्होंने उनका विचार रख लिया, अभी आपका विचार रखना है। तो जो भी इस प्रोजेक्ट, दोनों प्रोजेक्ट में भाग लेना चाहते हैं तो अपना विचार लेके आएंगे और अपना विचार रखेंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ स्टेज से ही कुछ बोला जाए और आप सुनते रहें ताली बजा के फिर घर में चले जाएं, ऐसे नहीं। आगे जो ये 2 सेशन रहेगा सबको बोलना है, ठीक है, सबको अपना अपना विचार रखना है। आप सभी अनुभव है, सबके कंट्रीब्यूशन से ही ये प्रोजेक्ट, दोनों प्रोजेक्ट चलेगा। गाइडेंस तो ऊपर से मिलता रहेगा कोऑर्डिनेटर्स की तरफ से। तो जैसे दोनों प्रोजेक्ट हमने अभी सुन लिए, दोनों प्रोजेक्ट्स का जो विचार थॉट्स है, तो ऐसे लगता है कि दोनों प्रोजेक्ट्स बोथ आर बेटर देन ईच अदर, है ना। तो लेकिन क्या है, हमारा शरीर एक है, हम एक जगह पे रह सकते हैं, तो इसीलिए सभी को सिर्फ एक प्रोजेक्ट में ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो इस प्रोजेक्ट में भाग लेंगे, तो अभी हाथ ऊपर करेंगे तो उसके हिसाब से रूम अलॉटमेंट होगा। जो पहला प्रोजेक्ट है 7 innate qualities, उसमें कितने भाई बहने भाग लेना चाहते हैं, थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे, मैं थोड़ा सा काउंट करना है, थोड़ा सा ऊपर। आपका उमंग उत्साह नहीं पूछ रहा हूँ, सबको तो है, लेकिन थोड़ा सा हाथ ऊपर कीजिए, मैं काउंट कर लेता हूँ। हाँ, मैं ऊपर भी देख रहा हूँ मिला के। ओके, बाकी जो हाथ नहीं उठाए हैं तो उनमें से जो सेकेंड प्रोजेक्ट जो रूपेश भाई जिसमें जिसका कोऑर्डिनेटर है, तो वो हाथ ऊपर करेंगे, संपूर्णता की 10 कदम। अच्छा, हाथ नीचे कर दीजिए। जो दोनों में हाथ नहीं उठाए ऐसे कितने सोल से, क्योंकि मैं 2 ही प्रोजेक्ट है, एक से सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, दोनों दोबारा काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ऐसे कोई है जो दोनों में किसी में भी भाग लेना नहीं चाहते? तो लगभग 460 सोल्स इधर बैठे हैं, उसमें से 100 इज फॉर फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड बाकी सब 360 फॉर द सेकेंड प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा, तो अभी ब्रेक है, अभी 11:30 बजे तक 2 मिनट बाबा को याद करके बैठेंगे, तो उसके बाद हम जाएंगे, फिर 11:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाइए। ओम शांति। थोड़ा बाद दें।